और अंत में कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो अभी तक अनुत्तरित रह गए हैं। हबीब तनवीर के रंगकर्म को यदि समग्रता में ग्रहण किया जाए तो यह निर्विवाद है कि उन्होंने भारतीय समकालीन रंगकर्म को ऐसा नया मुहावरा दिया है जो विशुद्ध रूप से देशज होते हुए भी सार्वदेशिक और सार्वजनीन है। समकालीन रंगमंच के इस स्वरूप ने भारतीय शास्त्रीय और पारंपरिक रंग सूत्रों को समूचे विश्व के सम्मुख नई तेजस्विता और नए रंग मूल्यों की अवधारणाओं को पुनर्प्रतिष्ठित करने में अप्रतिम योगदान दिया है। हमारे शास्त्रीय संगीत और नृत्यों में विविधता और कलात्मक सौष्ठव के जो विभिन्न रूप दिखाई पड़ते हैं उनके सूक्ष्म अध्ययन से पता चलता है कि एक ही राग या ताल में निबद्ध होने पर भी संगीत या नृत्य आचार्यों ने अपनी प्रस्तुतियों में उनका अपने तरीके से प्रयोग कर उन पर नीची मुहर लगाई है। इन्हें यह विभिन्न घरानों के रूप में व्याख्या करते हैं। हबीब तनवीर का यह रंगकर्म भी यदि उनका घराना कहा जाए तो संभवतः युक्त संगत होगा। कला की अन्य विधाओं और प्रदर्शनकारी कलाओं में एक जबरदस्त विभिन्नता है। साहित्य के विशिष्ट आचार्य के शिष्यगण यदि अपने गुरु के नियमों और अवधारणाओं का अनुकरण करते हैं तो उनकी रचनात्मकता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। रचनाधर्मिता के आग्रह के कारण उसमें नवीन्य का बोध होना ही चाहिए। यही बात ललित कलाओं के संदर्भ में भी कही जा सकती है। चित्रकला, मूर्तिकला आदि में किसी परम विशिष्ट आचार्य के शिष्यगण यदि अपने गुरु का यह अनुकरण करें तो वे काल जगत में अपना मौलिक स्थान बना पाने में समर्थ नहीं हो सकते। लेकिन प्रदर्शनकारी कला में ऐसा नहीं है। शताब्दियां गुजर जाने के बाद भी ग्रीक थिएटर, विक्टोरियन थिएटर, यथार्थवादी थिएटर, ब्रेस्टियन थिएटर, नो पिकिंग ओपेरा, कुट्टियाट्टम, कथकली, मोहनी आट्टम, भरतनाट्यम, ओडिसी, कथक, कुचिपुड़ी आदि नाट्य और नृत्य शैलियों तथा शास्त्रीय संगीत में जयपुर, ग्वालियर, बनारस, मेहर, लखनऊ आदि घरानों की विशिष्टता के बावजूद इनके श्रेष्ठ कलाकारों की रचनात्मकता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगता, बल्कि उन घरानों या शैलियों में पारंगत होने के कारण श्रेष्ठ कलाकारों की गरिमा में श्रीवृद्धि होती है। इस दृष्टि से यदि हम अपने समकालीन रंगमंच को देखते हैं तो हमें हबीब तनवीर के इस घराने के बारे में जिज्ञासा होती है जो उन्होंने 50 वर्षों के निरंतर रंगकर्म के बाद स्थापित किया है। इस संदर्भ विषय में चिंता के अनेक कारण हैं। पहला तो यह कि जिन लोक कलाकारों की अद्भुत अभिनय क्षमता, संगीत और नृत्यात्मक गतिविधान पर उनकी विलक्षण पकड़ को देख समझ कर हबीब तनवीर ने अपने नाट्य घराने में निष्णात किया, उनमें से अधिकांश या तो संसार में नहीं रहे अथवा इतने वयोवृद्ध हो चुके हैं कि अब उनकी क्षमता चुक गई है। उसके बाद की पीढ़ी के आंचलिक कलाकारों में रंगमंच के प्रति समर्पण की वह भावना नजर नहीं आती जो नया थिएटर की पहली पीढ़ी के लोगों में थी। थोड़ी सी प्रशंसा और ख्याति के बाद ही वे कलाकार रंगमंच को सीढ़ी के तरह इस्तेमाल कर यशोलिप्सा के उस द्वार की ओर उन्मुख हो जाते हैं जहाँ उन्हें अत्यंत समृद्धि, सुख सुविधाओं और यश की प्राप्ति संभव लगती है। नया थिएटर के अधिकांश नए अभिनेता हबीब तनवीर के रंगकर्म या उनके मुहावरे के प्रति पूरी तरह समर्पित नहीं हैं और न ही उनमें वह कौशल है जिसके कारण हबीब तनवीर का मुहावरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हो सका। वे अपनी सुविधाओं के अनुसार उनसे अभिमुख या प्रतिमुख होते हैं। नाटकों की निरंतर मांग के कारण हबीब तनवीर के लिए यह जरूरी सा हो जाता है कि वे नए कलाकारों को शामिल करें और उसका दुष्प्रभाव प्रचंड रूप से उनकी प्रस्तुतियों की कलात्मकता पर पड़ता है। 60 से 80 तक के दशकों में उनके प्रदर्शनों में जिस ऊर्जा, सहजता और जीवंतता का साक्षात्कार उस समय के दर्शकों को हुआ था वह अब निरंतर छीण से छीणतर होती जा रही है। आगरा बाजार, गांव का नाम ससुराल, चरणदास चूर, बहादुर कलारिन, मिट्टी की गाड़ी, देख रहे हैं नयन आदि तक की पुनर्प्रस्तुतियों में यह क्षरण स्पष्ट रूप से प्रलक्षित होने लगा है। यह सही है कि दर्शकों की नई पीढ़ी के लिए इन नाटकों का आस्वाद आज भी मोहक बना हुआ है और आज भी उनके नाटकों के प्रदर्शनों पर दर्शकों की भारी भीड़ टूटती है, लेकिन इसका कारण निश्चयतः वह नहीं है जो हबीब तनवीर के इन्हीं नाटकों की पूर्व प्रस्तुतियों का था। हबीब तनवीर के नाटक अब महानगरों के दर्शकों के बीच एक फैशन की चीज बनते जा रहे हैं जो एक अत्यंत विचारणीय विषय है। इस संदर्भ में हबीब तनवीर की व्यवस्थाओं और सीमाओं का विश्लेषण भी आवश्यक है। समूचे हिंदी प्रदेश के विभिन्न अंचलों और सुदूर देशों की खाक छानने के बाद जिस लोक संस्कृति, लोक नृत्य और अनुष्ठानिक वृत्तियों को उन्होंने अपने नाट्य प्रयोगों का कला सूत्र बनाया था वे सूत्र अब धीरे धीरे हाथ से छूटते जा रहे हैं। विकास, औद्योगिकीकरण या वैश्वीकरण के चकाचौंध में वे धीरे धीरे तिरोहित होते जा रहे हैं। भारतीय आंचलिक जीवन पर विकास के नाम पर जो प्रभाव पड़ रहा है उसकी सबसे बड़ी क्षति हमारी सांस्कृतिक धरोहर को होने लगी है। कारण यह है कि विकास के नाम पर सांस्कृतिक दृष्टि से गांवों में भी विदेशी प्रभाव की काली छाया मंडराने लगी है। स्वतंत्रता से पहले तक हमारे ग्रामीण अंचलों ने येन केन प्रकार अपनी पारंपरिक सांस्कृतिक विरासत को अक्षुण रखा था, लेकिन तथाकथित सभ्यता की दौड़ में उसका चरण आरंभ हो गया है। छोटे छोटे गांवों में फिल्मों की फूहड़ नकल ने हमारी पारंपरिक संस्कृति पर जो भरपूर वार किया है, उससे हमारी कलात्मक अस्मिता तिलमिला गई है। अब उसे रोका नहीं जा सकता। हजार प्रयत्नों के बावजूद आधुनिकता के नाम पर हमारे देश के अंचलों में ऐसी मनोवृत्ति घर करने लगी है जो हमारी सांस्कृतिक विरासत को धूलधूसरित करने पर आमादा नजर आती है। हबीब तनवीर इस खतरे को बखूबी समझ रहे हैं और बार बार इस संभावित सांस्कृतिक विभिषिका की ओर इंगित करते हैं। औद्योगिक विकास और निरंतर बदलती हुई परिस्थितियों की सामाजिक अनिवार्यता को स्वीकार करते हुए अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखने के लिए वे कहते हैं, हम सब इस बात से अवगत हैं कि सामाजिक ताने बाने में परिवर्तन के साथ लोगों के सांस्कृतिक जीवन में भी बदलाव आएगा, परंतु प्रश्न इस बात का है कि क्या हम अपने भविष्य के लिए अपने अतीत के कला ओढ़ दें? यह आवश्यक प्रतीत नहीं होता। पुरातन का स्वीकार समाहित किया जा सकता है और उसे एक नए रूप स्वरूप में ढाला जा सकता है। वर्तमान क्षण में भारतीय संस्कृति की जीवित परंपराओं से लगातार परिवर्तित होते संबंध में हमारे लिए भी सबसे विचारणीय बात यही होनी चाहिए, क्योंकि यह हमारी सांस्कृतिक पहचान से भी संबंधित है जो अतीत में अंग्रेजों के शासनकाल में कुछ धूम एवं कमजोर पड़ गई थी। लेकिन लगता है कि हबीब तनवीर का यह विचार एक सपना मात्र बनकर रह गया। लोक संस्कृति और लोक कलाएं आज व्यापारिक प्रदर्शन और धनोपार्जन का माध्यम बनती जा रही हैं और बाजार की मांग के अनुसार उसमें सस्तापन आने लगा है। भारतीय संस्कृति के तथाकथित उन नायकों और शक्ति संपन्न या सत्ता संपन्न लोगों के लिए यह प्रगतिशीलता का परिचायक हो सकता है, लेकिन इसके कारण हमारे जिन कलात्मक मूल्यों का विघटन हो रहा है उसकी तरफ से वे पूरी तरह बेखबर नजर आते हैं। उपभोक्तावादी संस्कृति किस तरह हमारे देश की एक अमूल्य विरासत को मनोन्मुखी कर रही है, हमारे देश के सांस्कृतिक सूत्राधारों को इसका एहसास ही नहीं है। अभी तनवीर के नाट्य मुहावरे के क्षरण का सबसे बड़ा कारण यही है। हमारे देश के सुदूर अंचलों के प्रतिभा संपन्न कलाकार भी अब उपभोक्तावादी संस्कृति के शिकार हो रहे हैं और उन कलात्मक मूल्यों से समझौता करने में कतई नहीं हिचकिचाते जो उनके पूर्वजों ने सदियों तक की यातना सहकर भी अब तक अक्षुण बनाए रखे थे। यह सांस्कृतिक परिवर्तन अपरिहार्य है। यदि सदियों पूर्व हमारी सांस्कृतिक कला विधाएं वैसी ही नहीं थी जैसे कि आज हैं, तो फिर यह अपेक्षा करना निरर्थक होगा कि आज से 50 या 100 वर्ष के बाद भी वे ऐसी ही बनी रहें जैसे कि आज हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि सदियों से चली आ रही हमारी सांस्कृतिक परंपराओं ने अपनी अस्मिता को समाप्त नहीं होने दिया। समय, परिस्थिति और राजनीतिक दबावों के कारण उनमें दैहिक परिवर्तन तो हुआ, किंतु उनकी आत्मा विशुद्ध रूप से भारतीय बनी रही। यही भारतीयता के रूप में हमारी सांस्कृतिक धरोहर बन गई और आज भी सुरक्षित है। लेकिन अब एक ऐसा खतरा मंडराने लगा है जो संभवतः हमारे हजारों साल के सांस्कृतिक इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। यह खतरा काल्पनिक नहीं है। इसकी पूर्व छायाएं स्पष्ट रूप से अपना मायाजाल फैलाने लगी हैं। ऐसा नहीं कि हबीब तनवीर ने इसके विकल्प के लिए कोई युक्ति न सोची हो। वे वर्षों से एक ऐसे संस्थान को स्थापित करने का सपना सजाए हुए हैं जहां वे प्रतिभा संपन्न आंचलिक कलाकारों को समकालीन नाट्य के लिए प्रशिक्षण दे सके, लेकिन हमारे प्रजातंत्र में 50 वर्षों के बाद भी उनका सपना पूरा ना हो सका। आज भी हबीब तनवीर के पास ऐसे अनेक लोग आते हैं जो उनसे अभिनय का प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, लेकिन उनमें से अधिकांशतः उस कठोर अनुशासन के अंतर्गत काम नहीं कर सकते जिसके हबीब तनवीर अभ्यस्त हैं या जिनकी वे कलाकारों से अपेक्षा करते हैं। एक बड़ा कारण यह भी है कि शहरी प्रभाव के कारण उनमें वह खुलापन, उन्मुक्तता और सहजता नजर नहीं आती जो हबीब तनवीर के मुहावरे का प्राण तत्व है। अधिकांश कलाकारों में लय और ताल के समुचित ज्ञान का अभाव होता है, जबकि हबीब तनवीर का नाट्य कर्म लय और ताल के बिना संभव ही नहीं है। इसका दुष्प्रभाव हबीब तनवीर के उन प्रसिद्ध नाटकों की पुनर्प्रस्तुतियों में देखा जा सकता है जो पिछले कुछ वर्षों से निरंतर हो रही है। नए कलाकारों को प्रशिक्षित करने में हबीब तनवीर कोई आपत्ति नहीं है। यह जानते हुए कि नया थिएटर के मुहावरे के मुताबिक वे अपने आप को ढाल नहीं सकते, हबीब तनवीर उन्हें यथासंभव प्रशिक्षण दे दिए हैं। वे किसी ट्रेनिंग स्कूल के खिलाफ हैं, लेकिन ट्रेनिंग के खिलाफ नहीं। अलखनंदन को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, कुछ पीरियड के लिए आए एक्टर और कुछ अनुभव हासिल करें और जाएं, अपना काम करें और अलग अलग मुद्दत कि वो बना दिए जाएं, कुछ जिनको सिर्फ महीने भर की फुर्सत है आ जाएं, कुछ 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, साल भर के लिए, और इसमें लाइसेंस की बजाय एक्चुअल अनुभव लेकर चले जाएं। लेकिन इस तरह के प्रशिक्षण से इस प्रश्न का उत्तर तो नहीं मिल सकता कि जो अब तक हमारे चयन में है। इस प्रशिक्षण की प्रशिक्षण पद्धति से अभिनेता सतही तौर पर कुछ बातों की जानकारी लेकर तो वापस चले जाएंगे, लेकिन उन्हें पूरी तरह आत्मसात नहीं कर पाएंगे। नतीजा होगा कि इस तरह के प्रशिक्षण से एक छद्म पारंपरिक समकालीन रंगमंच का विकास होने लगेगा और उसे विकसित करने वाले लोग स्वयं को अभिव्यक्त का शिष्य कहकर अपने को गौरवमंडित करेंगे। इस तरह के प्रशिक्षण से फायदे के बजाय नुकसान ज्यादा हो सकता है। अभी तनवीर इस छद्म पारंपरिक समकालीन रंगमंच के घोर विरोधी रहे। मुझे एक पुरानी बात याद आ रही है। संगीत नाटक अकादमी में नाटक विभाग का काम संभालने के बाद मेरे जहन में सबसे पहले इसी तरह का विचार आया था कि युवा रंगकर्मियों को भारतीय पारंपरिक नाट्य मुहावरे से प्रेरणा ग्रहण करने के लिए आकर्षित किया जाए और कोई नई योजना बनाई जाए। उस समय श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय अकादमी की अध्यक्ष थी और श्रीमती कपिला वात्सायन उपाध्यक्ष। यह प्रस्ताव उनकी रुचि का भी था और उसे क्रियान्वित करने के लिए उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया। यह योजना सन 1983 में शुरू हुई थी। इसके अंतर्गत आयोजित राष्ट्रीय नाट्य समारोह के अवसर पर एक राष्ट्रीय नाट्य परिसंवाद भी आयोजित किया गया था। अभी तनवीर ने इस परिसंवाद में अपना आलेख प्रस्तुत करते हुए कहा था, इस तरह पारंपरिक रंगमंच के साथ साथ छद्म पारंपरिक रंगमंच भी पनप रहा है। शासक वर्ग का प्रयास रंगमंच को पूरी तरह औपचारिक बना देने का रहता है और उनके सिकंजे में अत्यंत क्रांतिकारी विचार भी पालतू बन जाते हैं। वे रंगमंच को संरक्षण देने के ऐसे तरीके खोज रहे हैं जो ऊर्जस्वी कलाकारों को आग को शीतल कर देता है और मात्र ऐसी तकनीकी नाट्य युक्तियों की ओर ढकेल देता है जो क्रांतिकारी किस्म की प्रतीत होती है। प्रामाणिकता के प्रश्न में उनका कोई लेना देना नहीं होता, केवल उपभोक्ता बाजार में इस तरह के रंगमंच को सजे सजाए डब्बे में बंद सांस्कृतिक सामान की तरह पेश करना होता है। उनका संरक्षण इस तरह की छद्म संस्कृति को नए और चालाकी भरे ढंग से प्रोत्साहित करता है। अभी तनवीर की इस उक्ति में कितना दम है, इसका एहसास अकादमी को काफी समय बाद हुआ। इस योजना के अंतर्गत ही अकादमी ने धीरे धीरे इस छद्म पारंपरिक समकालीन नाटक को अंकुरित होते देखा और घबराकर 10 वर्ष के बाद ही नाट्य सलाहकार समिति की सिफारिश पर अकादमी ने योजना स्थगित कर दी। ऐसा नहीं कि इस योजना के अंतर्गत देश के युवा निर्देशकों की श्रेष्ठ प्रस्तुतियां नहीं हुई। रतन थियम का चक्रव्यूह, बंसी कौल का खेल का गुरु, भानु भारती का पशु गायत्री, प्रवीर गुहा का अहिल्या, बी जयश्री का लक्ष्मीपति राजा ने कथे, नीलम मान सिंह चौधरी का राजा भरथरी, उर्मिला कुमार थपलियाल का हरिश्चंद्र की लड़ाई, वामन केंद्रे का जुल्बा, बलवंत ठाकुर का बाबा जित्तो, राधा स्वामी का तुर्किरा अवलम, अरुमुघम का कुरुंझची आदि नाटक इसी योजना के अंतर्गत तैयार हुए थे। लेकिन 10 वर्षों के दौरान लगभग 200 प्रस्तुतियों में से स्तरीय रंगकर्म की संख्या बहुत कम थी और हमारे देश में सबसे बड़ी तादाद में छद्म पारंपरिक समकालीन रंगमंच अपनी जड़ें फैलाने लगा था। यह कहा जाना भी उचित नहीं है कि इस योजना को बंद कर दिया जाने के बाद छद्म पारंपरिकता का रंगमंच समाप्त हो गया हो, लेकिन यह स्पष्ट हो गया है कि सच्चे और प्रामाणिक अध्ययन तथा गहरी एवं एकनिष्ठ लगन के अभाव में किसी भी तरह का वास्तविक भारतीय रंगकर्म पनप नहीं सकता। अभी तनवीर के अनेक नाटकों और अनेक मुहावरों को देश भर में अनेक नए रंगकर्मी फैशन के तरह इस्तेमाल करने लगे हैं। यह और भी घातक तथा चिंताजनक बात है, लेकिन प्रश्न अभी भी अनुत्तरित है। अगर हबीब तनवीर के जीवन काल में ही उनके अपने ही नाटकों की पुनः प्रस्तुतियों में वह ओजस्विता, उन्मुक्तता, स्वास्थ्यता, वह स्वर, वह लय, वह ताल धीरे धीरे तिरोहित जान पड़ती रही तो आने वाले समय में क्या वह केवल स्मृति की या पुस्तकीय संदर्भों की बात बनकर रह जाएगी? शेक्सपियर के रंगमंच को जिंदा रखने के लिए राडा के अतिरिक्त द उल्डविक, द रॉयल शेक्सपियर कंपनी है। इस तरह नीलावस्की के विचारों को नई पीढ़ियों से अपने के लिए मास्को आर्ट थिएटर है। ब्रेस्ट के नाट्य सिद्धांतों को, उनकी रचना प्रक्रिया को गतिशीलता देते रहने के लिए बर्लिनर एंसेंबल है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है? भारतेंदु टैगोर की बात जाने दीजिए। स्वतंत्रता के बाद विश्वम्भु मित्र और हबीब तनवीर के मुहावरे को आने वाली पीढ़ी को सौंपने के लिए हमने क्या किया? क्या सचमुच कुछ नहीं किया जा सकता? हबीब तनवीर के मन की व्यथा अभी कम नहीं। अलकनंदा ने उनके मन में छुपा हुआ दर्द बहुत बारीकी से कुरेद दिया। वे बोले, लग रहा है बड़े बड़े जो बड़ी पाए के कलाकार थे वे तो मर खप गए। फिदाबाई चली गई, मायाबाई चली गई, लालू राम मर गए, ठाकुर राम मर गए, बाबूदास मर गए, मदन लाल बिल्कुल अपाहिज हो गए हैं और बिल्कुल किसी काम के नहीं, बाकी रहे हैं उम्र की वजह से। पुलवा राम का भी यही हाल है। अब ये सब बड़े बड़े नाम के थिएटर के हैं जो मेरे साथ काम कर चुके हैं और अब जो बच्चे खुचे हैं उनमें से और शहरी कलाकारों को मिला कुछ काम चलाया जा रहा है जितना बन सकता है, लेकिन मैं खुद निराश हूँ। यह बहुत दिनों तक चलेगा नहीं। एक तो उम्र का तकाजा है, मुझ में इतनी एनर्जी भी नहीं है, लेकिन अगर होती भी तो इसको वाइड अप कर देना ज़्यादा मुनासिब कई बार लगा है। तो मैं चाह रहा था कि बजाय इसके कि धीरे धीरे मिट जाए, एक एक करके सब मर खप जाए या निकल जाए या कहीं या बंद हो जाए, ज़रा कुछ शोर वोर मचा के कुछ एक बार अच्छा सा उत्सव करके सेलिब्रेशन के साथ डेथ समाप्त, यह ख्याल आता है। पर यह ख्याल भी तो हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं देता और अंत तक प्रश्न अनुत्तरित रह जाता है।